शारदा जी इस समय अपने कमरे में बैठी हुई थी। उनके हाथों में एक तस्वीर थी और वो उस तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी, अभय। इस नाम के साथ ही शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। आंसू की बूंद उस तस्वीर के ऊपर गिरती है और शारदा जी रोते हुए कहती हैं, अभय देख रहे हो ना क्या हालत हो गई है मेरी। अगर तुम होते तो ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता, क्योंकि तुम तो हमें बहुत प्यार से रखते थे, कभी मुझ पर एक आंच नहीं आने दिया तुमने। लेकिन अब देखो मेरी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई है। मुझे छोटी सी नौकरी करनी पड़ रही है और उसमें भी खर्चा ठीक से नहीं चल पा रहा है। मैंने तो सोचा था अरुणिमा से थोड़ी मदद मांग लूँगी, लेकिन उस लड़की से भी बात नहीं हो पा रही है। आस्तिक ने उस तक पहुँचने के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। और फिर वो नंबर जिससे मुझे कॉल आया था और उसने कहा कि उसे पता है कि तुम्हारा खून किसने किया है। अब है, मैंने बहुत कोशिश की उस नंबर पर दोबारा बात करने की, लेकिन वो नंबर दोबारा मिल ही नहीं रहा है। अगर किसी ने कोई और मजाक किया होता तो शायद मैं इस बात को भूल भी गई होती, लेकिन तुम्हारे नाम से? ये मुझे कौन जानता है जो तुम्हारा नाम लेकर मुझसे मजाक करेगा? ये कोई ऐसा है जो तुम्हारे और मेरे बारे में सब जानता है, इसलिए उसने तुम्हारा नाम लिया है। वरना ये मुमकिन ही नहीं है कि इतने सालों बाद मुझे एक अनजान नंबर से तुम्हारे नाम पर कॉल आए। शारदा जी अपने दर्द की पुरानी यादों में जी रही थीं, जहां पर उन्हें ये याद आता है कि उसकी और अभय की शादी के 4 साल बाद एक दिन अभय अचानक से लापता हो जाते हैं और फिर शारदा जी को पता चलता है कि उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। शारदा जी उस दिन बुरी तरीके से टूट गई थीं। वो जल्दी से पुलिस स्टेशन जाती हैं ताकि अभय का शव पहचान सके, पर अभय की जिस तरीके से हत्या की गई थी वो सच में बहुत निर्दयी था। अभय के पूरे शरीर पर रॉड के निशान थे। ऐसा लग रहा था कोई अभय को सिर्फ मारना नहीं चाह रहा था, बल्कि तड़पा तड़पा के मारना चाह रहा था। पूरे 15 दिन गायब था अभय। उसके बाद उसकी लाश जंगल में मिली। लेकिन ये केस पुलिस के लिए भी बहुत हैरान कर देने वाला था, क्योंकि अभय की लाश जब जंगल में मिली थी तो उसके सीने में उसका दिल नहीं था। हत्यारे ने अभय का दिल निकाल लिया था। पुलिस ने पूरे जंगल में तलाश किया, लेकिन उन्हें अभय का दिल कहीं भी नहीं मिला। जब पुलिस वाले अभय का केस बंद कर रहे थे, तब उन्होंने ये कहते हुए केस बंद कर दिया कि इस दुनिया में जिसने भी अभय की हत्या की है वो कोई इंसान नहीं है बल्कि हैवान है। पुलिस वालों ने अपनी तरफ से जब इस केस को बंद कर दिया तो शारदा जी ने अपने तरीके से अभय के हत्यारे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो हर कदम पर नाकामयाब रहीं और आखिरकार एक वक्त के बाद उन्होंने भी हार मान ली और अभय के हत्यारे की तलाश करनी बंद कर दी। पर इतने सालों बाद किसी ने अभय के नाम पर शारदा जी को फ़ोन किया था और ये कहा था कि उन्हें पता है कि हत्यारा कौन है। इतने सालों बाद इस नाम के साथ शारदा जी फिर से एक उम्मीद लगाए बैठी थी कि हो सकता है कि वो अगर एक बार फिर से कोशिश करें तो अभय के हत्यारे तक पहुंच सकती हैं। रात का समय, महल। सबने डिनर कर लिया था और अपने अपने कमरे में चले गए थे। डाइनिंग टेबल पर तो प्रणाली भी बैठी हुई थी, लेकिन खाने से ज़्यादा वो अपनी आंखों से अरुणिमा को घूरे जा रही थी। उसका तो मन कर रहा था कि डाइनिंग टेबल पर पड़े चाकू को अरुणिमा के पेट पर दे मारे, लेकिन आस्तिक की वजह से वो ऐसा कुछ नहीं कर पाई। अरुणिमा और जानवी ने मिलकर सबको डिनर सर्व किया था और उसके बाद उन दोनों ने भी डिनर किया। जब से जानवी आई थी, अरुणिमा अकेली खाना नहीं खाती थी। सब डिनर करके अपने अपने कमरे में चले गए थे। बस आस्तिक ही था जो अपने कमरे में ना जाकर दूसरी दिशा में चला गया था। ये सिर्फ अरुणिमा को पता था कि आस्तिक कहाँ गया हुआ है। डाइनिंग टेबल से सारा सामान समेटकर अरुणिमा और जानवी वापस किचन में रख रहे थे। अरुणिमा जूठे बर्तन को सिंक में डाल रही थी और जानवी सबके कमरे में रखने के लिए पानी की बोतल भर रही थी। तभी अरुणिमा का ध्यान जानवी के हाथ पर जाता है और वो जानवी के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, जानवी तुम्हारे हाथ में ये निशान कैसे हैं? जानवी कहती है, पता नहीं भाभी बचपन से ही है। अरुणिमा ने हैरानी से पूछा, तो तुमने कभी अपने परिवार वालों से पूछा नहीं कि तुम्हारे हाथ में ये दाग कैसे आया? ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारे हाथ को जलाया गया है। कुछ लिखा था क्या यहाँ पर? दिखने में तो कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है। जानवी कहती है, पता नहीं जब से होश संभाला है अपने हाथ में इस दाग को देख रही हूँ। वैसे मैंने कोशिश की थी अपनी माँ से एक दो बार पूछने की कि मेरे हाथ में ये निशान कैसे आया। पहले तो वो मुझ पर गुस्सा होती थी और कहती थी कि बचपन में एक बार खेलते हुए मेरा हाथ मोमबत्ती के ऊपर लग गया था, उससे ये निशान आया है। और फिर एक बार कहा कि मैं खाना बनाने वाले चूल्हे में गिर गई थी, तब मेरा हाथ जल गया था। उसके बाद जब तक होश संभाला और माँ से इस बारे में कुछ सवाल जवाब करती, तब तक मेरी माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो कुछ जवाब देने की हालत में ही नहीं थी। उसके बाद मेरे लिए ये सवाल हमेशा सवाल बनकर ही रह गया। अब तो मुझे परवाह भी नहीं है कि ये दाग मेरे हाथ पर क्यों है। जानवी की बात सुनकर अरुणिमा मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है, तभी किचन के दरवाजे पर पृथ्वी आते हुए कहता है, जानवी क्या कर रही हो, कितनी देर हो गई, रूम में आओ। जानवी धीरे से हाँ में सर हिलाती है। अरुणिमा मुस्कुराते हुए कहती है, तुम जाओ मैं कर लूंगी। पर जानवी जल्दी से बॉटल को आरओ के नीचे लगाते हुए कहती है, नहीं भाभी बस थोड़ा सा ही तो काम है, मैं खत्म करके चली जाऊंगी। लेकिन अरुणिमा जानवी के हाथों से वो बॉटल लेती है और कहती है, जानवी मैं कह रही हूँ ना, पृथ्वी बुला रहा है, तुम जाओ। वैसे भी बहुत ही कम लोगों के नसीब में होता है ये पल। जानवी ने हैरानी से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी, भैया ने कभी आपको ऐसे नहीं बुलाया क्या? अरुणिमा के चेहरे पर एक निराशा भरी मुस्कान आ जाती है। अब वो क्या बताए जानवी को कि वो जब भी अपने कमरे में जाती है तो आस्ती का व्यवहार कैसा रहता है, वो तो अपने कमरे में भी जाने में डरती है। अरुणिमा जल्दी से कहती है, मेरी छोड़ो, मेरी शादी को तो समय हो गया है, पर तुम्हारी और पृथ्वी की तो नई नई शादी हुई है। इस समय अपने पति पर ध्यान दो, घर गृहस्थी तो सारी जिंदगी चलती रहेगी।